Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om, Om, Om. Adiguru भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर शिव भक्ति संबंधी भाव पर विचार कर रहे हैं। भगवान शंकराचार्य जी के शिव जी के प्रति उनका कैसा भाव है, इन स्तोत्रों के द्वारा व्यक्त होता है। और परमात्मा के प्रति जो भक्ति करने वाले भगवान के भक्त हैं, भक्ति में कैसा भाव बनाना चाहिए, तो इन स्तोत्रों के द्वारा हमको बोध होता है। अभ्यास के लिए 30वां श्लोक।
वस्त्रोद्धूत विधौ सहस्रकरता पुष्पार्चने विष्णुता गंदे गंधवात्मतान्न पचने बर्हिर्मुखाध्यक्षता पात्रे कांचन गर्भतास्ति ममेदमयि चेत् बालेन्दुचूडामणे शुश्रूषां करवाणि ते पशुपते स्वामिन् त्रिलोकी गुरु। नालंबा परमोपकारकमिदं त्वेकं पशूनां पते पश्यन् कुक्षिगतान् चराचरगणान् वायस्थितान् रक्षितुम् सर्वामर्त्यपलायनौ सदमति ज्वालाकरं भीकरं निक्षिप्तं गरलं गलेन गलितं नोद्रीर्णमेव त्वया ज्वालो ग्रस्सकलामराति भयत श्वेला कथं वा त्वया दृष्ट किं च करे धृत करतले किं पक्वजम्बूफलम् जिह्वायां निहितश्च सिद्धगुटिका वा कण्ठदेशे भृत किं ते नीलमणिर्विभूषणमयम् शम्भो महात्मन् वद। नालंबा सकृदेव देव भवत सेवा नतिर्वानुति पूजा वा स्मरणं कथा श्रवणमं यालोचनं मादृशां स्वामिन् स्थिर देवतानुसरण यासेन किं लभ्यते का वा मुक्तिरितः कुतो भवति चेत् किं प्रार्थनीयं तदा किं ब्रूमस्तव साहसं पशुपते कस्यास्ति शम्भो भवद् धैर्यं चिद्दशदृशात्मना स्थितिरियं चान्यैः कथं लभ्यते ब्रस्यद्देवगणं त्रसन्मुनिगणं नश्यत् प्रपञ्चं लयं पश्यन्निर्भय एक एव विहरत्यानन्दसान्द्रो भवान्। वस्त्रोद्धूतविधौ सहस्रकरता पुष्पार्चने विष्णुता गंधे गंधवात्मता न पचने बर्हि मुखाध्यक्षता पात्रे कांचन गर्भतास्ति मयि चेत् बालेन्दु चूड़ामणे शुश्रूषां करवाणि ते पशुपते स्वामिन् त्रिलोकी गुरु। शंकराचार्य जी महाराज भगवान शिव की स्तुति करते हुए शिव के सामने खड़े होकर अपने आप को एक साधारण जंतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हे शिवा, हे त्रिलोकी गुरु, तीनों लोक के एक ही गुरु हैं। आज समाज में तो बड़ा विभेद दिखता है। एक कहता है कि मेरे गुरु फलाने हैं, दूसरा कहता है कि मेरे गुरु फलाने हैं। तुम्हारे गुरु कौन है? तो बोले हमारे तो फलाने गुरु हैं। और तुम्हारे गुरु? बोले हमारे फलाने गुरु। और तुम्हारे गुरु कहाँ रहते हैं? तो कोई कहता है मेरे गुरु तो वृंदावन रहते हैं। और तुम्हारे गुरु? मेरे गुरु हरिद्वार रहते हैं। और फिर तुम्हारे गुरु? बोले मेरे गुरु काशी रहते हैं। किसी से पूछो तो कहते हमारे गुरु तो नेपाल रहते हैं। अरे भाई, त्रिलोकी गुरु, तुम्हारे और हमारे गुरु कहां से आ गए? भाई, जीवात्मा गुरुओं को भी व्यक्तिगत विभु व्यापक को भी परिच्छिन्न बना लेता है, क्योंकि उसका सोच ही इतनी सीमित है कि वह असीम को भी सीमित बनाकर अभोग्य को भोग्य बनाना चाहता है, क्योंकि भोग वासना इतनी है तीव्र जीव में, अभोग्य को भोग्य बनाना चाहता है। जीव की सोच इतनी सीमित है, इतनी परिच्छिन्न है कि अपरिच्छिन्न व्यापक को परिच्छिन्न बनाता है, बनाना चाहता है। लेकिन परमात्मा की विशेषता भी यह है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखही तिन तैसी, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना है परमात्मा का स्वरूप, वह भी वैसा ही बन जाता है। भोग की वासना है तो अभोग्य होता हुआ भी भोग्य बन जाता है, और परिच्छिन्नता की वासना है, परिच्छिन्नता की दृष्टि है, तो अपरिच्छिन्नता होता हुआ भी उसकी परिच्छिन्नता की भावनाओं को देखते हुए वह परिच्छिन्न जैसा हो जाता है। लेकिन यह निश्चित है कि किसी की परिच्छिन्न वृत्ति से वह परिच्छिन्न नहीं होता, उसकी भावना अनुसार परिच्छिन्न सा प्रतीत होकर परमात्मा सभी का गुरु है, त्रिलोकी गुरु। लेकिन भक्त लोग अपना व्यक्तिगत गुरु के रूप में अनुभव करता है, मेरे गुरु है। हाँ, तो हमारे गुरु है, तुम्हारे गुरु है, क्योंकि मेरे और तेरे ये परिच्छेद में ही जीवात्मा जी रहा है, वो इस सीमा को तोड़ नहीं पा रहा है। इस परिच्छिन्न सीमा को तोड़ने का एक ही साधन है, वह है ब्रह्म विचार, तत्व विचार, तत्व चिंतन। संसार और संसार के विषयों का चिंतन करने वाला व्यक्ति इन सीमाओं को नहीं तोड़ सकता है, ये परिच्छेदता परिच्छिन्नता को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसका चिंतन ही परिच्छेद्य में, परिच्छेदक में सीमित है। वो सीमित वस्तु को जानता है, सीमित वस्तु को चाहता है, क्योंकि असीमित वस्तु को वह धारण करने की उसके पास कैपेसिटी, सामर्थ्यता ही नहीं, क्योंकि वो खुद सीमित उपाधि में मैं करके बैठा हुआ है। तो निस्सीम असीम को वह धारण करने का साहस ही नहीं कर सकता है। कि एक लोटा लेकर चलने वाला व्यक्ति, उसको कहा जाए कि समुद्र के सारे पानी को तुम भर लो लोटे में, तो हिम्मत ही नहीं करता है कि इतने छोटे से लोटे में मैं सारे समुद्र को कैसे भर लूं। वो नहीं समझ सकता कि भाई समुद्र को भरने के लिए लोटा भी उतनी ही विशाल होनी चाहिए, तो वो नहीं समझ सकता है, है? अरे भाई दृष्टि हो तो समुद्र को तुम लोटे में भर सकते हो। कैसे महाराज? उदाहरण दूं मैं, तुम स्वप्न देखते हो कि नहीं? है, स्वप्न देखते हो ना? जहां रहकर तुम स्वप्न देखते हो वो तुम्हारा निवास स्थल, तुम्हारा आश्रय कितना बड़ा है बोलो? जहां रहकर तुम स्वप्न देखते हो वो तुम्हारा आश्रय, स्वप्न आश्रय कितना बड़ा है? तुम्हारा हृदय स्वप्न का आश्रय वही तो है, और क्या? तुम कहां रहकर स्वप्न देख रहे हो? हृदय में रहकर स्वप्न देख रहे हो ना? और जिस समय तुम स्वप्न देखते हो रहते कहां हो? तो हृदय में, अंगुष्ठ मात्र, तुम्हारा अपने अंगूठे के परिमाण का तुम्हारा हृदय है, दहराकाश है, हृदयाकाश है, वहां रह रहे हो। और तुमने स्वप्न में समुद्र देख ली तो वो समुद्र कहां आ गया बोलो? है? लोटा तो फिर भी बहुत बड़ा है, अंगुष्ठ परिमाण का स्पेस के अंदर जगह में सारा समुद्र समा गया कि नहीं बोलो? तुमने पहाड़ देख ली, वो पहाड़ उसमें समा गया कि नहीं? समुद्र देख ली, वो समुद्र कहां गया? कहां आ गया? एक अंगुष्ठ परिमाण हृदय के अंदर सारा समुद्र घुस गया कि नहीं बोलो? तो ये जो है साधन की बात है। तो लेकिन व्यक्ति सोच नहीं सकता है, समुद्र में सारे माने स्वप्न में सारे समुद्र को अपने छोटे से हृदय में भरने वाला जीवात्मा जागृत में समुद्र को देखकर कहे कि लोटे में इसको भर ले, तो घबरा जाता है, सोच ही नहीं सकता है, कल्पना ही नहीं कर सकता है। तो त्रिलोकी गुरु हो भगवान शिव को संबोधन किया। भगवान शिव एक ऐसे गुरु हैं कि वो तीनों लोक के सभी प्राणियों के गुरु हैं, क्योंकि सभी को सबसे पहले उन्होंने ही ज्ञान का उपदेश दिया है। पुष्पदंताचार्य जी शिवमहिमा स्तोत्र में बड़ा सुंदर लिखते हैं। पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि महाराज कि सारे जितने भी वाणियां हैं वो सब वाणियों की रचना करने वाले तो आप ही हैं। मधुस्फीता वाच परम अमृतम निर्मितवतस्तव। देखो मधुस्फीता वच वाणी और परम अमृतम वच वाणी तव निर्मितवतम, दोनों प्रकार के वाणियों को आपने ही रचना किए, आपने ही सृष्टि किए, दोनों का निर्माण आपने किया है। मधुस्फीता वच माने सुनने में बड़ा अच्छा लगने वाला, फलश्रुतियां अर्थवाद वाक्य, वेद के अर्थवाद वाक्य, अर्थवाद वाक्य माने फल का निर्देशन करने वाले वाक्य, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इसी को मधुस्फीता बोलते हैं। मधु से युक्त माने मधु हनी, मधु खा मधु हनी, खाने में बड़ा मधुर है, बड़ा अच्छा लगता है। तो मधुस्फीता इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यामीमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चिता। अविपश्चित माने मूर्ख लोग, मूर्ख लोग हैं। विपश्चित माने विद्वान, अविपश्चित माने मूर्ख लोग। वे लोग क्या करते हैं? पुष्पिताम वाचम प्रवदंती, क्योंकि पुष्प में ही मधु रहता है। मधु कहां रहता है? पुष्प में रहता है, है? मधुकर कहां से मधु ले आता है? पुष्प से ले आता है, हा? तो पुष्प में मधु रहता है, तो इसीलिए पुष्पदंताचार्य जी ने मधुस्फीता वाचा कह दिया, भगवान श्री कृष्ण ने पुष्पितां वाचम दोनों अर्थ ही किए, पुष्पितां वाचम कहना और मधुस्मिता वाचक, ये अर्थवाद को बताने वाला वाक्य है। अर्थवाद माने फलश्रुति, अर्थवाद, ज्योतिषो में नहीं स्वर्ग कामो यजेत, तुमको स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग की चाहना है, इच्छा है, तो तुम सब कुछ छोड़कर ज्योतिषो में यज्ञ करो, ज्योतिषो में यज्ञ करो तो तुमको स्वर्ग अवश्य प्राप्त होगा। जब व्यक्ति ये सुन लेता है तो वह ज्योतिषोम यज्ञ करने में प्रवृत्ति कर लेता है। हाँ, यही तो पुष्पितम वाचम, यही तो मधुस्मिता वाचम। तुम यहां दान करोगे तो मरने के बाद फिर पैदा होगे तो वह ऑलरेडी तुमने दान किया हुआ वस्तु तुमको स्वतः ही प्राप्त होगा। ये क्या है, यही तो कहा जाता है धर्म में, यही कहा जाता है। ये धर्म का विषय यही है कि नहीं, बोलो है? यहां जो दान करोगे मर के फिर जन्म होगे तो पैदा होगे तो वो चीज तुमको प्राप्त होगा, जो तुमने इस जन्म में दान में दी थी वो वस्तु दोबारे जन्मने पर वो स्वतः तुमको प्राप्त होगा। तो दान ये जन्मांतर के लिए एफडी करने का एक सुंदर धर्म ने एक प्रक्रिया बना दी है, है? तो एफडी कर लो भाई, तो दूसरे जन्म में आपको सुख मिल जाएगा, सुरक्षित मिलेगा भाई। हाँ, एक ने कहा हमसे, तो ये आजकल आंख दान नेत्र दान की बात करते हैं ना, मरने के बाद नेत्र दान करो, ये बहुत प्रचार में आ रहा है और बहुत लोग करते भी हैं, प्रचार में खूब आ रहा है। तो कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, पुराने जमाने के लोग हैं, वो आकर प्रश्न करते हैं, महाराज ये नेत्रदान करने की बात करते हैं, ये करना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा नेत्र दान का मतलब क्या है, जीते जी कि मरने के बाद है? मरने के बाद तो दान ही क्या होगा, जीते जी दान करो, दान करना है तो जीते जी दान करो। बोले जीते जी संकल्प करेंगे देंगे मरने के बाद। तो यही ना है, संकल्प जीते जी करेंगे देंगे मरने के बाद। मरने के बाद तुम दोगे कि वो लेंगे, क्योंकि देने वाले तो तुम रहोगे नहीं, तो दोगे कहां से? संकल्प किया उसी को आधार मानकर, संकल्प किया तो इसने दिया ऐसा वो मान लेते हैं और रहने देते हैं कि चलो आज तुमने आंख दे दी, जब तक जियोगे तब तक इसका प्रयोग तुम करो, मरने के बाद हम ले जाएंगे, डॉक्टर लोग यही ना कहते हैं। तो बोले वो देनी चाहिए कि नहीं? हमने कहा मरने के बाद जो कुछ करना है कर लो, क्या फर्क पड़ने वाला है? बोले नहीं महाराज, बहुत लोग कहते हैं कि मरने के बाद आंख दान नहीं करनी चाहिए। बोले क्या कहते हैं? बोले कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि यदि तुमने अभी आंख दान कर ली तो दूसरे जन्म में तुमको आंख मिलने वाला नहीं है, इसका कोई संबंध ही नहीं है, समझे कि नहीं? अब एक तरफ तो ये कह देते हैं कि जो यहां दान करोगे वो मरने के बाद मिलेगा, ये कहते हुए गाय दान करते हैं, यही कहते हुए सुवर्ण दान करते हैं, यही कहते हुए अन्न दान करते हैं, यही कहते हुए वस्त्र दान करते हैं, है? सब कुछ दान किया वो वस्तु जन्मांतर में मिलेगा कहते हैं और दान करते जा रहे हैं, और फिर नेत्र दान करोगे तो जन्मने के बाद फिर दूसरे जन्म में उन्हें नहीं मिलेगा। लेव जी, हमको एक व्यक्ति ने कहा जो वस्तु दान किया जाता है वो वस्तु फिर उपयोग नहीं की जाती है, दान किया हुआ वस्तु उपयोग नहीं की जाती है। तो हमने कहा ये तो बिल्कुल गलत है भाई, तुम किसी को वस्त्र का दान करते हो तो क्या नंगे घूमते हो? वस्त्र दान कर दिया, वस्त्र दे दिया दूसरे को, तो फिर वो वस्त्र नहीं पहनना चाहिए ऐसा नियम है क्या? किसी को अन्नदान किया तो क्या तुम भूखे मरते हो? दान में दिया हुआ वस्तु खाना नहीं चाहिए? अरे भाई ऐसी बात करते हो? तो धर्म कहीं कहीं नहीं इस प्रकार से स्पष्ट नहीं है हमारे सनातन धर्म में, तो कई जगह धर्म इसी तरह भ्रम पैदा कर देता है, धार्मिकों को भ्रम पैदा कर देता है। तुमने दान कर दिया है, जब तक जीवन है तब तक आंख से देख लो, मरने के बाद वो आंख तो देखने लायक है ही नहीं। यदि उससे किसी का उपयोग होता है तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुमने यदि दान नहीं किया तो ऐसे भी राख तो बननी है, है? राख बनना है कि नहीं? वो दूसरी बात ये देखो, तुम नेत्रदान करोगे तो मर के जब जाओगे चक्षुर इंद्रिय तो तुम्हारे साथ ही रहेगा। चक्षुर इंद्रिय का दान नहीं करते हो? हाँ, चक्षुर इंद्रिय का कोई दान कर ही नहीं सकता है। चक्षु गोलक का दान करते हो तुम। अब वो गोलक तो या तो फिर आग लगाएंगे, हिंदू होगा तो राख बन जाएगा, और कोई मुसलमान होगा गाड़ देंगे कब्र में तो मिट्टी बन जाएगा। गोलक का तो और शरीर का जो हाल होगा, चक्षु गोलक का भी वही हाल होगा। चक्षुर इंद्रिय तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ जाएगा, तुम जाओ और चक्षुर इंद्रिय यहां रहे संभव ही नहीं है। होता क्या है, जिसके चक्षु गोलक खराब है, चक्षुर इंद्रिय उसके ठीक हैं, उसके पास हैं अपनी चक्षुर इंद्रिय, चक्षु गोलक खराब हो गई, और चक्षु गोलक तुम्हारी है, चक्षुर इंद्रिय तुम अपना ले गए, गोलक छोड़ गए, उसके गोलक बिगड़ गए, इंद्रियां उसके पास अपने पास आ ही है, तो क्या करते हैं कि उसके गोलक के जगह तुम्हारा गोलक फिट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई जन्मांध व्यक्ति के पास चक्षुर इंद्रिय नहीं है, ऐसा नहीं है। अंधे के पास उसकी अपनी चक्षुर इंद्रिय यथावत है, सुरक्षित है, अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय किसी कारण से किसी निमित्त से बिगड़ती नहीं है। हाँ, चक्षुर इंद्रिय बिगड़ती है भावना से, है? जिसके भावना अच्छे हैं तो चक्षुर इंद्रिय अच्छा हो जाएगा, भावना खराब है तो चक्षुर इंद्रिय दृष्टि खराब होगी, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्त, यही तो चक्षुर इंद्रिय जो है वह तो उसकी अपनी है, अंधे की भी अपनी चक्षुर इंद्रिय है। तो चक्षुर इंद्रिय तो तुम लेके जाओगे, और जब दोबारे जन्म होगा तुम्हारा, चक्षुर इंद्रिय तुम्हारी ही जो लेके गए थे वही होगा, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत लोगों को ये भ्रांति है।